आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। यूक्रेन में रह रहे ऑस्ट्रेलियाइयों को फिर एक बार लौटने की सलाह। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान आज से। और जारेड हेन पर तय हुए यौन उत्पीड़न आरोपों को रद्द कर तीसरे ट्रायल का आदेश जारी। और अब खबरें विस्तार से। कोषाध्यक्ष जॉर्ज फ्राइडनबर्ग ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में परिस्थितियां संकटपूर्ण हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने दूतावास को बंद कर चुका है। यह तब आता है जब अमेरिका ने चेताया है कि रूस का यूक्रेन पर हमला निश्चित ही है। श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि अमरीकी अधिकारी यूक्रेन की परिस्थिति को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे और वे इस मामले में अमरीका के साथ हैं। हजारों लोगों ने कॉल दिया है कि फेडरल सरकार को कोविड-19 की रैपिड एंटीजन जांच सभी के लिए मुफ्त कर देनी चाहिए। नया कोरोना रोधी टीका नोवावैक्स अब ऑस्ट्रेलिया के टीकाकरण अभियान का आधिकारिक तौर पर हिस्सा बन गया है। 1.5 लाख हस्ताक्षरों वाली एक पेटिशन को सोमवार को संसद के सामने पेश किया गया, जिसमें यह मांग रखी गई है, जहां गठबंधन ने रैपिड एंटीजन टेस्ट कंसेशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त कर दिया है, वहीं मांग की जा रही है कि ये सुविधा सभी के लिए उपलब्ध हो। क्वींसलैंड के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अब राज्य के अस्पतालों पर दबाव कम होने लगा है। राज्य ने 7 सैटेलाइट अस्पतालों के लिए आखिरी जमीन भी रक्षित कर ली है। इन अस्पतालों का निर्माण इस साल से शुरू हो जाएगा। क्वींसलैंड में आज 6 कोरोना मृत्यु और 3,750 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के चलते 41 लोग गहन चिकित्सा केंद्र में हैं, जिनमें से 20 को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री येवेडात का कहना है कि ये नए अस्पताल राज्य के बड़े अस्पतालों में जगह बनाने का काम करेंगे।
These things can be done closer to the communities in other facilities such as these satellite hospitals that free up space in our big hospitals. I know locally in my area that meant we freed up an entire floor by moving our dialysis and oncology out of the hospital and meant we could establish a whole new ward. That's extra hospital beds, overnight beds, by creating space in our hospitals.
New South Wales में आज 14 कोरोना मृत्यु और 6,184 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। अस्पताल में भर्ती 1,649 लोगों में से 100 को गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल मिल रही है। वहीं विक्टोरिया में 2 कोरोना मृत्यु और 7,104 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नाराज फ्रंटलाइन कर्मचारियों के साथ सुलह जल्द हो जाएगी। राज्य भर में नर्सें कल यानी 15 फरवरी को स्टाफ की कमी और भुगतान की शिकायतों को लेकर हड़ताल पर जा रही हैं। श्री पेरोटे का कहना है कि हालांकि उन्हें किसी तरह की सुलह की कल से पहले उम्मीद नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आज यूनियनों से मुलाकात कर रहे हैं।
And I look forward to hopefully reaching resolution. Do I expect that to occur by tomorrow? No, but that doesn't mean we don't stop working to reach that agreement.
प्रधानमंत्री की पत्नी जेनी मॉरिसन ने कहा है कि वे जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर ग्रेस टेम के प्रधानमंत्री के साथ किए असहज व्यवहार से क्षुब्ध हैं। सुश्री टेम महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के रवैये की मुखर आलोचक रही हैं। वे जनवरी में मॉर्निंग टी के दौरान श्री मॉरिसन की ओर उदासीन रही थीं और उनसे हाथ मिलाने से भी बचती नजर आई थीं। श्री मॉरिसन ने इस बात को तो तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वे चाहेंगी कि उनकी बेटियां सभी से सम्मानजनक व्यवहार करें।
I just found it a little bit disappointing because we'll welcome you in our home. I respect people that want to change things, stand up for their beliefs and are strong, but I still think there's manners and respect. I want my daughters to grow up to be fierce, strong, independent, amazing people. And I think they can still do that and show kindness to other people and be polite and have manners.
श्रीमती मॉरिसन का कहना है कि उनके पति की गलत छवि बनाई जा रही है। पिछले कुछ महीनों में श्री मॉरिसन की छवि धूमिल हुई है और लेबर लगातार उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाता रहा है। देश के बैंकर एक बार फिर फेडरल और प्रदेश सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वे बुजुर्गों के आर्थिक हनन को रोकने के लिए कानून बनाएं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10% ऑस्ट्रेलियाई बुजुर्ग आर्थिक, कानूनी, भावनात्मक या शारीरिक उत्पीड़न या उदासीनता सहते हैं। ये आग्रह होबार्ट में एकत्र हुए कार्यकर्ताओं, योजना निर्माताओं, समुदायों और व्यावसायिक संगठनों की ओर से आया है जो बुजुर्गों के उत्पीड़न को रोकना चाहते हैं। अगर आपको समर्थन की आवश्यकता है तो एल्डर अब्यूज हेल्पलाइन को कॉल करें 1300-651-192 या 07-3867-2525 पर। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज यूक्रेन और रूस के साथ इस हफ्ते बैठक कर बढ़ते तनावों को कम करने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि यह लगातार निश्चित होता जा रहा है कि रूस आक्रमण करेगा। यूक्रेनियाई और रूसी राष्ट्रपतियों से अपनी मुलाकात के पहले श्री शुल्ज ने रूस को चेताया है कि अगर वो हमला करता है तो उन पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
Und deshalb ist es notwendig, klar zu sein, klar zu sagen, dass im Falle einer
That's why it's necessary to be clear, to say clearly that in the event of military aggression against Ukraine that threatens its territorial integrity and its sovereignty, that will lead to tough responses and sanctions that we have carefully prepared and that we can make effective immediately.
मॉस्को की मांग है कि यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियत देश नाटो के सदस्य नहीं बनाए जाएं, साथ ही पश्चिमी यूरोप से सेना हटाई जाए और यूक्रेन में हथियार पहुंचाने भी बंद किए जाएं। अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वे अफगानी लोगों का रुपया जब्त ना करें। उनका कहना है कि ये नाइंसाफी होगी। अमेरिका ने अपने सैन्य बल को अफगानिस्तान से हटाने के बाद वहां के सेंट्रल बैंक में करीब 12 बिलियन डॉलर की राशि जब्त कर ली थी। इसमें से 9.7 बिलियन डॉलर मानवीय सहायता, अफगानी कोष और 9/11 के पीड़ितों के लिए दे दिए गए थे। श्री करजई का कहना है कि ये पैसा केवल अफगानी जनता का है और ये उनसे नहीं छीना जाना चाहिए।
This money does not belong to any government. This is the property of the Afghan people, and the Afghan people are the rightful owners of this property. I request President Joe Biden to reconsider his decision and to return the totality of Afghan assets reserves back to the people of Afghanistan.
और अब खबरें भारत से। भारत में आज यानी सोमवार को पिछले 24 घंटे में नए कोविड 19 मामलों में 24% की गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 34,113 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि रविवार की सुबह को कोविड के कुल मामले 11% की कमी के साथ 44,877 पर दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड के ताज़ा मामलों के बाद देश में कोरोना संक्रमण से कुल मामलों की संख्या 4,26,65,534 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में 346 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। अब तक देश में 5,09,011 लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं भारत में चुनावी हवाएं तेज चल रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए राज्य की 55 सीटों के अलावा गोवा और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में राज्य के 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान पड़ रहे हैं। कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनाव कराए जा रहे हैं और गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए 301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए मतदान डाले जा रहे हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलिया डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.83 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। सजायाफ्ता एनआरएल दिग्गज जैरेड हेन पर तय किए गए यौन उत्पीड़न के आरोप न्यू साउथ वेल्स की एक अदालत ने खारिज कर दिए हैं। न्यू साउथ वेल्स कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील ने तीसरे ट्रायल के आदेश जारी किए हैं। 33 वर्षीय हेन को 2018 के यौन उत्पीड़न के दो आरोपों में दोषी पाया गया था। पैरामैटर के पूर्व खिलाड़ी को मई महीने में 5 साल और 9 महीने की सजा सुनाई गई थी। उनके बैरिस्टर टीम गेम एससी ने 4 आधारों पर अपील प्रस्तुत की थी, जिसके बाद तीसरे ट्रायल के आदेश जारी कर दिए गए थे। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 37 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे, अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मेलबर्न में भी कल धूप ही धूप है, यहाँ अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल तेज धूप खिली रहेगी, यहाँ का अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बरसात की आशंका है, अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और डार्विन में कल तूफान की आशंका है, अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप ही धूप है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।